एवं मिषा सा ब्रुवतो व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरो स्वराजन् गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुं समाव्यार्च दधीन्यमन्थम् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुः राज्यो विकर्षाद्भुजकङ्कणस्रजः चलान्नितम्बस्तनहारकुण्डल विषाद कपोलारुण कुंकुमाननः उद्गायति नाम अरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमास्पृशध्वनिः दह्नाश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरास्यते येन दिशाम मङ्गलम् नन्दस्य कृष्णानुचरस्य एवं ब्रुवतः सा दीर्घायपि निशा व्यतीता एवं शब्द द्वारा नंद महाराज और उद्धव जी के संवाद की आवृत्ति की गई है। इस प्रकार नंद महाराज बोल रहे थे और कृष्णानुचर बोल रहे थे। उद्धव जी को कृष्णानुचर कहा गया है। अशेष चातुर्जवतः अपि उद्धवस्य। यहाँ कृष्णानुचर कहने का आशय क्या है? जो कृष्ण का अनुचर है ठीक कृष्ण जैसा है, मतलब बोलने में परम चतुर, परम दक्ष, जो नंद बाबा और यशोदा को सांत्वना दे सकते थे लेकिन वे भी नहीं दे पाए, यह भाव। कृष्ण सब विषयों में सबसे बड़े चाहे बोलना हो, समझाना हो, कोई भी कला हो, सर्व कला विशारद हैं कृष्ण, सर्वाकर्षक। और ऐसे कृष्ण के अनुचर बोल रहे थे, रात भर प्रवचन करते रहे लेकिन नंद महाराज और यशोदा का शोक नहीं गया कुछ भी। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं, हे राजन, हे सर्व सद्बुद्धि प्रकाशमान, कृष्ण की कथा में जो तुम्हारी इतनी निष्ठा है इसके चलते तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। देव गोस्वामी नंदस्य आगे रख रहे हैं, उद्धव जी समझाने में जो व्याख्यान दे रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा कृष्ण के गुणों को बोल रहे हैं, उनका शोक बढ़ता जा रहा है, इसीलिए नंदस्य इति प्रथम निपाता, प्रथम रखा गया है प्रधानता की दृष्टि से। जितना उद्धव जी बोल रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो नंदस्य कृष्णानुचरस्य ब्रुवत, ये सब षष्ठी विभक्ति में कि बोलते बोलते सा निशा व्यतीता, सा वह रात बीत गई। सा वह का क्या अर्थ है? कृष्ण संलाप संबंधिनी निशा, कृष्ण कथा से पूर्ण निशा, अथवा सा दीर्घा अपि निशा, वह बड़ी रात भी बीत गई। सा अर्थ दीर्घ कालीन रजनी के लिए कहा जा रहा है, बड़ी रात थी लेकिन वह भी बीत। न नंद महाराज का शोक दूर हुआ और न उद्धव जी का सांत्वना देना रुका। तो काल तो बीतता ही जाता है, भोर हो गया, दोनों की बात नहीं बंद हुई। जब भोर हुआ तब उद्धव जी उठकर नित्य कृत्य करने के लिए चले और देख लिए कि नंद महाराज का शोक तनिक भी कम नहीं हुआ और बढ़ गया। त्यह समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च दधिन्य मंत्र। गोपियां उठी समुत्थाय सम्यक उत्थाय। अपने अपने घरों में गोपियां खूब अच्छी तरह से जग करके उठ करके और दीपक जलाई, दीपक जला करके और देहली आदि की पूजा की। समुत्थाय का अर्थ है जाग करके नहीं करना चाहिए, वो सोती नहीं थी, वो नींद तो चली गई। अस्माकम तु गते कृष्णे गता निद्रा पि बैरिणी। राधा रानी कहते हैं कि अरे सखी, वे कांताएं, वे स्त्रियां धन्य हैं जो सपना देखती, कम से कम सपने में अपने प्रियतम से मिल लेती हैं, बात करती हैं, वो धन्य हैं स्त्रियां। लेकिन अस्माकम तु गते कृष्णे गता निद्रा पि बैरिणी। लेकिन हमारा तो ऐसा हुआ कि जब से कृष्ण गए तब से बैरिणी नींद भी चली गई। सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों के सौंदर्य का वर्णन किए हैं। दीपक जल रहा है, भोर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधकार हो और छोटा सा भी दीपक जल रहा है, आरती हो रही है और उस समय भगवान का मुख देखा जाता है तो एक विशेष शोभा होती है। इसलिए हमने देखा है हमारे मंदिरों में नियम है कि मंगला आरती के समय और सब दीपक बुझा दिए जाते हैं और बल्ब, थोड़ा थोड़ा अंधकार रहता है और उस दीपक के प्रकाश में हम लोग भगवान का मुख देखते हैं, झलमल करता है। तो दीपक के प्रकाश में श्री गोपीजन, जिसमें श्री राधा रानी भी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सुखदेव गोस्वामी भावावेश में वर्णन कर रहे हैं, तादीप दीप्तैर मणिभीर विरेजुः रज्जु विकर सद्भुज कंकण स्रज चल नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोलारुण कुंकुमानन। रज्जु विकर सद्भुज कंकण स्रज, रज्जु को खींच रही थी भुजाओं से, तो पहले भुजाओं का ध्यान कर रहे हैं। रज्जु विकर सद्भुज विकर सत्सु रज्जु विकर सत्सु मंथन दंड रज्जु विकर सत्सु। मंथन दंड में जो रज्जु है, रस्सी है, उसको खींच रही है जो भुजाएं, उन भुजाओं में कंकणा नाम स्रक, स्रक का अर्थ श्रेणी माला, कंकण स्रज, कंकणा नाम स्रक श्रेणी। एक एक दो दो चूड़ी नहीं है, बहुत चूड़ियां पहनी हुई है और उन भुजाओं से खींच रही है। तो कंकणा कंकण सृजन चलनम वाद्यम च सूचयति, कि चूड़ियां वाद्य के रूप में काम कर रही हैं। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं बारम्बार ऐसे झन 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 खींचने से वो आवाज आ रही है। मंथन का शब्द भी वाद्य का काम करे, ठीक उसी तरह से दही दही मथने का जो शब्द है वो मृदंग की आवाज की तरह है और हाथों में जो चूड़ियां हैं वो करताल की तरह, झंझ की तरह, और गान तो ये कर ही रही हैं। कंकड़ों की श्रेणियां हैं हाथों में, इसका अर्थ है कि बाजे बज रहे हैं, आपस में टकरा रही हैं चूड़ियां। और चलन नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोला रुण कुंकुमानना, चलंत नितंब स्तनहा हार कुंडल च जासंता। उनके बड़े बड़े नितंब चल रहे हैं, उनके स्तन हिल रहे हैं और गले में जो हार लगाई है वो हार हिल रहे हैं और कानों में कुंडल हिल रहे हैं। सबके लिए चलत शब्द का प्रयोग किया गया, चलत, अपने अपने स्वभाव स्वरूप के अनुसार वे हिल रहे हैं। चलत नितंब, चलत स्तन, चलत हार, चलत कुंडल, और इससे चलत भी कुंडल ही त्विसंत स्फुरंत कपोला। चलते हुए माने स्फुरित होते हुए, हिलते हुए कुंडलों के त्विश से, प्रकाश से, जगमगाहट से तीसत कपोला, झलमल कर रहा है कपोल कुंडलों की आभा से। स्वभावता एवं रज्जु विकर्षद श्रमज खेद बिंदुवीर व भ्राजत कपोल। रस्सी खींचने में जो श्रम होता है तो श्रम से जो स्वेद बिंदु थोड़े थोड़े उभर रहे हैं मुख पर, उनसे मुख बहुत सुंदर लग रहा है पसीने की बूंद। तीसत कपोला, क्योंकि दीपक में छोटी छोटी बूंदे परिश्रम की, पसीने की बूंदे भी चमक रही हैं मुक्ता की तरह, मोती की तरह, तो इससे कपोला और सुंदर लग रहा है। अरुण कुंकुमानना, श्रम के कारण मुख पर ललाई आ गई है। जब परिश्रम होता है तो मुख थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है। भाविक सौंदर्य है इस तरह से आनंद है, कुमकुम से युक्त आनंद। बहुत सी मणियों का आभूषण पहने हुए हैं वे, तो दीपक से वे दीप्त मणियां हैं। वैसे तो स्वयं भी चमक रही हैं मणियां रत्न, लेकिन दीपक से और दीप्त हो गए, प्रकाशित हो रही। दीप दीप्त ही मणि भी, अथवा दीप दीप्त का अर्थ है कि दीपक से भी अधिक दीप्त मणियां लगाई हुई। दीप दीप्त दीपेभ्यो अपि दीप्त मणि भी, दीपक से भी अधिक जगमगाहट है जो गहना लगाई है आभूषण। तो उन गहनों से ताह बिरेजु बहुत सुंदर लग रही, विशेषण रेजु विशेष रूप से राज रही है, सुंदर लग रही। कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण का गान हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं बहुत सुंदर लग रही। बिरेजु शब्द द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सभा के श्रोताओं को, मुनियों को उस दृश्य की ओर खींच रहे हैं। क्या कहूँ, कितनी सुंदर लग रही हैं, जरा ध्यान करके देखिए। विशेषण रेजु बहुत सुंदर लग रही। अच्छा, दही मंथन का मूल प्रयोजन कर रहे हैं, जो गान गाने के लिए दही मस्ती थी, मूल प्रयोजन ये था। अथवा संततम कृष्णा वेश युक्ता नाम पितासा ब्रज व्यवहार रक्षणाय श्री कृष्णैक रक्षित तत्त संस्कार वशाद दधि मंथने अपि तदा वेशम सूचयन तत्र च संजोग अवसर तया गाने न अतिशयम दर्शयन तेन जगतो अपि मंगलम जातम इत्या। मंथनों करती थी तो उस समय उन्हें संयोग जैसा अनुभव होता था कृष्ण के प्रति, एक वैसा अवसर था गान के कारण, और भी तरह से आवेश होता था, तो लगता था हम कृष्ण के साथ हैं, इसीलिए गाती थी। और गाने से उनको तो सुख मिलता ही था, इससे जगत का भी हित होता था। जगतोपि मंगलम जातम, यह इस श्लोक में कह रहे हैं। उद्गायति नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम दिवम स्पृशद ध्वनि दध्नाश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निराश्य तेजेन दिशाम मंगलम। अरविंद लोचनम उद्गायति नाम, अरविंद लोचनम, अरविंद का अर्थ है कमल, लोचन आंख, जिनकी आंख कमल से भी अधिक सुंदर है उनको गा रही थी। इति सौंदर्य प्रधानम गानम, गीत में सौंदर्य की प्रधानता है, मतलब भगवान की सुंदरता को अधिक गा रही, कमल नयन शब्द सिद्ध कर रहा है, सौंदर्य सूचित हो रहा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य की जो माधुरी थी उसको ये गा रही अधिक, उसमें अविष्ट। अरविंद लोचनम उद्गायति नाम, उद्गायति नाम उच्च गायंती नाम उच्च इति आवेशो दर्शिता, आवेश से उच्च स्वर से गा रही है, आलाप ले लेकर गा रही। आवेश का अर्थ है आनंद की अनुभूति, डूब जाना उसी में, गाते रहना। तो दही मच रही थी, तो दही अब मथ दिया गया है, घी निकल आया है, ये सब नहीं देखती थी मथ रही थी, क्योंकि गान में आवेश है न कि दही मंथन में आवेश है। गा रहे तो उच्च उद्गायती नाम ब्रजांगना नाम, उच्च स्वर से गाने वाली ब्रजांगनाओं का ध्वनि शब्द दधना निर्मंथन शब्द मिश्रित, दही के मंथन में जो शब्द निकल रहे थे उनसे मिश्रित हो करके, कंकर आदि का शब्द भी ये सब मिश्रित हो करके दिशाओं का अमंगल दूर कर रहे थे। इसका अर्थ है कि दिशाओं में साफ चूड़ियों की आवाज और दही के मथने का की आवाज, कंक और किंकड़ी की आवाज, ये सब हो रहे थे और इससे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था। अमंगल क्या है? कृष्ण विमुखता करने। दिशाओं का अमंगल मतलब लोगों का अमंगल। ब्रज का अमंगल क्या था? कृष्ण का अदर्शन। तो गोपियों का गीत ऐसा भाव पैदा कर देता था इतना कि लोग ऐसा महसूस करते थे कृष्ण हमारे साथ, तो इसलिए ब्रजवासियों का विरह जनित अमंगल दूर हो रहा था, ये दुख दूर हो रहा था। और ऊर्ध्वलोक में देवताओं का और सब का काम जा रहा था, मतलब उनकी वासनाएं संसारिक निरस्त हो रही थी, प्रभाव पड़ रहा था ऐसा अद्भुत, ये सब कृष्ण के भक्त हो रहे थे। इस तरह दिशाओं का मंगल दूर हो रहा था। वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसती क्वचित च बिलज्ज उद्गायति नृतते च मद्भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। इतना आवेश है कृष्ण में कि वे गा रही हैं, उनको ध्यान नहीं है कि हमारे ससुर क्या कहेंगे या और घर के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, वो तो बस आवेश में है, गा रही पिया जो गा रही हैं भगवान के विषय में, तो उनके आंखों से अश्रु है, कंठ भी गदगद है, फिर भी गा रही। तो वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए मेरा स्मरण करके, और द्रवते जस चित्तम जिसके चित्त की धारा मेरे तरफ बहने लगे, बहती है। रुदत्य भीक्षणम जो हमेशा रोता रहता है मेरे विरह में, और हसती क्वचित च और कभी कभी ठठा कर हंसता भी है, हसती क्वचित च भक्त हंसता भी है, और बिलज्ज उद्गायति विगत लज्जा हो करके लाज छोड़ करके उच्च स्वर से गाता है, ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। भगवान का वाक्य है और यहाँ ये सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है। निरस्यते जन दिशाम अमंगलम, दिशाम बहुवचन में है, समस्त दिशाओं में जितने भी चर अचर प्राणी हैं सब पर गोपियों के गीत का असर हो रहा है और कृष्ण प्रेम भर रहा है सब में, और ब्रजवासियों का भी कृष्ण विरह ज्वर कम हो रहा है। तो गा रही है। तो गान में प्रधान स्वर क्या है? गोपीजनों के कंठ का स्वर प्रधान वह है, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। लेकिन इसके साथ दधना निर्मंथन शब्द मिश्रित, दही का निर्मंथन जो हो रहा है वो शब्द मिला हुआ है, और च च का अर्थ है कंकड़ का शब्द, किंकिणी का शब्द, ये शब्द उसमें मिश्रित। चकारात कंकड़ादे शब्द च मिश्रित, अपना जाति का जो स्वाभाविक काम हो कर रही हैं और गा रही है। दही मथ रही हैं तो उनको शाम के समय प्रियतम किस तरह वन से लौटते थे उसको वे गा रहे। गोपी कहती है, हे सखी, कल हमारे इसी गली से कृष्ण आए तो आने में उनकी आवनी ही हमारे आंखों में बस गई है। डगमगी डगनी धरनी छब ही के भार, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो गए, त्रिभंग ललित हो गए, क्योंकि सुघराई का इतना बड़ा भार है उनके ऊपर, सौंदर्य का, उसको संभाल नहीं पाते, सौंदर्य का भार संभाल नहीं पाते। तो कैसे रखते हैं पग, उनका पग कैसे पड़ता है? डगमगी डगनी धरन, डगनी माने डेग, जब पग रखते हैं, पग धरन करते हैं तो डगमगे हिलते हैं। धरनी छबीले उरे अच्छी बनमाल की, टेढ़ी है शोभा के छवि के भार से, और धरनी छबीले उरे अच्छी बनमाल की, बनमाल की जो धरनी है, बनमाल फूल की माला जो उनके ऊपर लटकी है छबीले उर पर, उर्मन बक्षस्थल, सलिल मतलब शोभाशाली बक्षस्थल, सुंदर बक्षस्थल पर, छबीले उर पर बनमाला की धरनी बहुत अच्छी है, अच्छी सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारो, कोरिक मतलब कोटिक, कोटिक कामदेव से भी अधिक सुंदर उनका मुख है, चित्त चुभी चित्तवनी लोचन विशाल की, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, विशाल लोचन की चित्तवनी देखना मेरे चित्त में चुभ गई, चुभ गए जैसे कोई अस्त्र धस जाए, ऐसे कलेजा में धस गई है उनकी चित्तवनी, चित्तवनी मतलब तिरछी चित्तवन देखना, चित्त चुभी चित्तवनी लोचन विशाल, काली इही गली अली निकसे औचकया, अरी अली अरी सखी कल मेरे इसी गली में अकस्मात आए, तो पहले से सूचना नहीं थी, अकस्मात आए औचक आए, कहा कहो अटक भटक तिही काल की सखी, मैं उस समय की अटक भटक क्या कहूँ, मैं तो बिल्कुल अवाक रह गई, क्या करूं क्या बात करूं, मैं तो स्तब्ध रह गई, अटक भटक मतलब अपनी विवशता, मैं क्या कहूं, कहा कहूं अटक भटक तिही काल की, भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाए, वो आनंद का घन छा गया बरसने लगा और मेरा रोम रोम भींग गया, तो आनंद घन बरस रहा है तो इसका मतलब आनंद जल से रोम रोम भीज गया, शीतल हो गई, बसी मेरी आंखी न मैं आमनी गोपाल के, मेरी आंख में आज भी केवल वही आमनी बस गई, कल ही की लीला है तो आज तो बिल्कुल ताजी रहेगी, बसी मेरे आंखी न मैं आमनी गोपाल, डगमगी डगनी धरानी छबी के भार, डगमगी डगमगी डगनी धरनी छबी के भार, डगमगी धरनी छबी ले उर आछी बन माल की, धरनी छबी धरनी छबी ले उर आछी बन माल की, धरनी छबी ले उर आछी बन माल की, सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदरा बदन पर कोटि का मदन वार, सुंदर बदन कोटि का मदन वार, चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की, चित चुभी काले यही गली अली निकस औचक आय, काले यही गली अली निकस औचक आय, काले यही गली अली निकस औचक आय, काले यही गली कहाँ अटक भटकती ही काल की, कहाँ अटक भटकती काल की, कहाँ अटक भटकती ही काल की, कहाँ अटक भटकती काल की, भिजई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, भिजई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय विजयी हरो
आनंद के घन छाया
बसी मेरी आँखिना में आवली गोपाल के
बसी मेरी आँखिना में
बसी मेरी आँखिना में आवनी गोपाल की
बसी मेरी आँखिना में आवनी गोपाल की।
सांझ के समय वन से आने की लीला है। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए मोहन मन ही हरि आवत हरु 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 मैंने धीरे धीरे। सांझ समय साजे साज शाम के समय सज करके आते और साथ में ग्वाल बाल मोहन मन ही मन को मोहने वाले हरि आवत हरु हरु धीरे धीरे आ रहे हैं। शीस मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े पीत ऊपर न जमे टाको चारु गोखरी। शीश पर मोर मुकुट है कर में लकुटी है और पीत उपरैना ओढ़े हैं पीला दुपट्टा ओढ़े हैं जिसमें गोखरू टाका गया है जरी की गई है सोने की। या पीला वस्त्र है तो दूसरे दूसरे रंग के मणि चढ़ाए गए हैं जहां तक। हरिचंद्र बेनु को बजावत है गावत सुहावत है लिए साथ साथ गाय बाछर। बेनु बजा रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं और साथ में गाय बच्चे बछरू आ रहे हैं। नाचत ग्वाल मध्य लाजत तो मनोज लग ग्वालों के बीच में नाचते ही आ रहे हैं जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजत तो गोपाल पाए घुंघरू। हे सखी ध्यान से सुनो कृष्ण आ रहे हैं और उनके पैर में घुंघरू कितना अच्छे बज रहा है। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए
सांझ समय साजे साज ग्वाल
बाल साथ लिए मोहना मन हरी आवत हरु हरु समोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े सी समोर
मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े
सी समोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े क्यों चारु गोखरु पितरु पर ना जाने हरि चंद बिनु को बजावत है गावत सु हरि चंद बिनु
को बजावत है गावत
सु हरि चंद बिनु को साथ साथ गाय बछरु आवत
है साथ साथ गाय बछरु
आवत है लिए साथ साथ गाय बछरु आवत
है साथ साथ गाय बछरु।
नाचत ग्वाल मध्य लाजत जलखी नाचत ग्वाल नाचत ग्वाल मध्य लाजत मन जलखी नाचत ग्वाल आव सखी बजत गोपाल पाल घुंघरु
सखी बजत गोपाल पाल घुंघरु।
सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू
आए सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू।
इस तरह से गोपियां गीत गा रही हैं, सब मिलन के गीत गा रही हैं, बिछुड़ने के नहीं। तो सांझी लीला में भगवान का मिलन होता है, लौटते, इसलिए यह लीला बहुत आनंद देने वाली है। फिर एक लीला भरतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, रानी कहती हैं कि हे प्रियतम, आप होरी खेलिए, आपको मना नहीं है, खेलो मिली होरी, ढोरो केसर कमोरी, और केसर की कमोरी भी ढरकाइए, होरी खेलिए, केसर और रंग भी ढालिए, और फेंको भरी भरी झोली, और अबीर आदि जो भी फेंकना हो भर भर करके फेंकिए, लाज जिए में विचारो ना, आप लज्जा मत कीजिए, जो भी रंग डालना हो डालिए, डारो सबे रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, आप सब सखाओं के साथ नाचिए, रंग डालिए और चंग डफ भी बजाइए, जो सबन रिझाओ सरसाओ संक धारो ना, संकित मत होइए, होली खेलिए, लेकिन कहत निहोरी कर जोरी हरिचंद्र प्यारे, हे हरिचंद्र प्यारे, हे कृष्ण चंद्र प्यारे, आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, एक हाहा ताही टारो ना, उसको मत टारो, इस पर ध्यान रखो, नयन है चकोर मुखचंद ते परेगी ओ, या तो इन्हें आखी न गुलाल लाल डारो ना, ये आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नयन चकोर है, तो आंख में भी गुलाल डाल देंगे तो आपका मुख देखने में बड़ी बाधा हो जाएगी, नहीं देख पाऊंगी, इसलिए और सब जगह रंग डालिए लेकिन आंख में गुलाल मत डालिए, लाल का अर्थ लाल और लाल माने कृष्ण, प्यारा कृष्ण दोनों हो, जाते इन आंखी में गुलाल लाल डारो ना, इसलिए आंख में गुलाल मत डालिए, नहीं तो आपको देखने में बाधा होगी, बहुत बड़ी विपत्ति हो जाएगी।
खेलो मिली होरी ढोरो केसर कमोरी फेंको, खेलो मिली होरी ढोरो केसर कमोरी फेंको, भरी भरी झोरी लाजो जिए में बिचारो ना, बारो सब रंग संग चंग बजाओ गाओ, 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 सब नारी सरसाओ संक धरना, कहत निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, कहत निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, कहत निहोरी कर जोरी चंद प्यारे, कहतनी होरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, मेरी बिनती है एक हाहा ताही टारो ना, मेरी बिनती है एक हाहा ताही टारो ना, नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओ, तो नैना है चकोर मुख चंद ते परेगी ओ, कर मुख चंद तो पड़ेगी वो तो तेरी नखिन गुलाल लाल डारो ना तेरी नखिन गुलाल या तेरी नखिन गुलाल लाल डारो ना तेरी नखिन गुलाल लाल डारो
भारतेंदु जी ये पद लिखते हैं। राधा रानी कहती हैं हरि सखी दही को कृष्ण ने गिरा दिया, जैसे यहाँ गिरा रहे हैं भगवान हमारे दही को गिरा दिया, मटका फोड़ दिया। तो ललिता जी कहते हैं इसमें क्या है, दही जमा लेंगी, दूसरा दही जमा लेंगी, इसके लिए क्यों बेचैन है। तो कहती दही तो जमा लेंगे लेकिन वो दही गिराने वाला मन लेगा, वो मन कहाँ पाएंगी।
खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, तरु पे बिराज छल जिए अति कीन है, तरु पे ग्वाल बाल साथ के हुई तो उत घाटी न में, ग्वाल बाल साथ के हुई तो उत घाटी न में, छिपे हरी चंद्रबान हेतु चित दिनो है, छिपे हरी चंद्रबान ही समय गोपी न बिलो की कूदी धाये सब, ही समय गोपी न बिलो की कूदी धाये सब, उधमा मचायो दूध दधि घृत छीन है, उधमा मचायो कही जो गिरा सत फिर हूँ जमाय लई है, दही जो गिरा सत फिर हूँ जमाय मन कहाँ पहिए दान मिस जान लीनो है, मन कहाँ पहिए दान मन कहाँ पहिया दान मिस जान लीनो है, मन कहाँ पहिया दान मिस जान लीनो
है।
द्वारि ब्रजौकशः दृष्ट्वा रथं शातकौमं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः। अब सूर्योदय हो गया। जब भगवान सूर्य उग गए, सब जगह प्रकाश छा गया, तब ब्रजवासियों ने नंद महाराज के द्वार पर एक सोने का रथ देखा खड़ा हुआ, सात कौंभम रथ। रथ में जितने भी उपकरण लगे थे उसके निर्माण में, उन सब में स्वर्ण की प्रधानता थी, इसलिए सोने का रथ कहा गया। बहुत सुंदर रथ था। काशनी स्त्रियां बात करने लगी उस रथ को देखकर। सुखदेव गोस्वामी सूर्य के लिए भगवान विशेषण दे रहे हैं। क्या भाव है सुखदेव गोस्वामी के मन में सूर्य को भगवान कहने का? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, भगवती इति तमो नाशनादि सत्यादि रूपेण श्री भगवत पूजाधिष्ठानत्वादिना वा। संपूर्ण विश्व के अंधकार का नाश कर दिया सूर्य ने, तो सूर्य के इस प्रभाव का वर्णन करने के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अथवा भगवान की पूजा सूर्य के भीतर होती है, सूर्य मंडल के भीतर, तभी भगवत पूजा के अधिष्ठान है, इसलिए उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तादृशी स्तुतिश्च तद उदयस्य सर्वेषां ब्रजवासिनां श्रीकृष्ण वार्ता प्राप्ति सुख समय हेतु तया संतोषेण। अथवा सुखदेव गोस्वामी भगवान सूर्य की इस तरह की स्तुति कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इसमें कारण ऐसा लगता है कि आज सूर्योदय के बाद सूर्य के प्रकाश में ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के वार्ता की प्राप्ति होगी और उस वार्ता से समस्त ब्रजवासी सुखी होंगे, इस संतोष के कारण सूर्य को भगवान कह रहे हैं। आज सूर्य का प्रकाश होने पर ही रथ का दर्शन हुआ, उद्धव से भेंट होगी, बात होगी, ब्रजवासी सुखी होंगे, इसलिए सूर्य को भगवान कह रहे हैं परम प्रेम सादर से। सुखदेव गोस्वामी के हृदय का भाव, उनको संतोष हो रहा है कि आज का बहुत मंगलमय दिन प्रारंभ हो रहा है ब्रजवासियों के लिए। अतः कह रहे हैं, भगवती सूर्जे उदिते के उदित होने पर नंद द्वारी सात कौंभम रथम दृष्ट्वा ब्रजौकशः अब्रुवन् कस्य अयम् च यह रथ किसका है। तो रथ लेकर अब तक तो एक ही व्यक्ति ब्रज में आया था, वो है अक्रूर। तो पहले की देखी हुई घटना मन पर छाई हुई है, तो गोपियों के मुख से सहसा निकला, अक्रूर तो नहीं आ गया। किसी गोपी ने कहा, वो क्यों आएगा, अब तो उसका स्वामी मर गया, कंस मर गया, कंस का काम करने वाला है, कंस के भेजने से आया था, कृष्ण को ले गया, अब क्यों आएगा। कोई गोपी कहती है, अब आया है हमारा मांस लेकर कंस को पिंडदान करने के लिए, और वही बाकी जो हमारा प्राण तो ले ही गया, शरीर भर चल रहा है, ये भी ले जाएगा, पिंडदान करेगा, इसी के लिए आया होगा। अक्रूर जी काहे को आने जाए, वो आए हैं उद्धव जी और इनको सुख देने के लिए आए। इन हरिश्वरी जी इस पर एक उक्ति कहते हैं, निष्फलापि करोत्यार्ति प्राग दृष्टा श्लील कर्म जाए। कोई व्यक्ति पहले कोई बहुत दुष्ट कर्म किया हो, किसी को दुख दिया हो, तो उस व्यक्ति का स्मरण हो जाए किसी दूसरे को भी देख करके, तो उसी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि होती है, तो निष्फला होती है। अक्रूर जी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन पहले वे बहुत दुख दे करके गए हैं। अतः भीति तदयुक्त मेवासान शासित तदरथ दर्शनात्, उस रथ को देख करके पुनः भय हो गया कि अब पता नहीं अक्रूर क्या करेगा इस बार। च शब्द है ऊपर वाले श्लोक में, अयम च चकाराद अक्रूर रथ स्मरणेन प्रारुदंश्चेत्यर्थ। चकाराद अनुक्तम चयनित किंचित समुचित समुच्चयति भाव। च से सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि अक्रूर के रथ को देख करके और पूर्व घटना याद करके बहुत जोर से रोने लगी, मतलब किस तरह से प्रियतम को अक्रूर ले गया था वो सारी घटना याद आने लगी और वे रोने लगी। अथवा अन्य भी च से जितनी बातें नहीं कही गई हैं, उस रथ को देख करके जो जो दशा हुई उन सब को व्यक्त कर रहा है। तो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं अक्रूर आगत क्यों वा यह कंसस्यार्थ साधक जेन नीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचन सक्रोधम आहु। अब मन में क्रोध उठ रहा है अक्रूर के पूर्व कृत कर्मों की याद करके, वह नीच अब मुख दिखाने क्यों आया ब्रज में, इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध आ रहा है। अथा उत्कंठा प्रधाना नाम अंतपाती नाम कसांचित वाक्य मह अक्रूर इति द्वाभ्याम। यह कंसस्य अर्थ साधक, जो कंस का अर्थ साधक है, अर्थम साधितवान इति अर्थ साधक। यह कंसस्य अर्थ साधक, जो कंस का अर्थ साधक है, अर्थम साधितवान इति अर्थ साधक। अर्थ को साधा इसलिए अर्थ साधक। यह व्यंग है, वो है नौकर कंस का, कंस की भी जान मरवाया, वो किसी का नहीं होगा। कृष्ण के हाथ से उसकी मृत्यु लिखी हुई थी उसके कर्मों के अनुसार, कृष्ण यहाँ रहते तो इसका स्वामी भी नहीं मारा जाता, तो इधर हम लोगों को भी दुख दिया, और जो स्वामी इसका जीवन भर पालन किया था, रथ दिया था, उसको भी ले जाकर के मरवा दिया। इसको कौन अक्रूर नाम दे दिया, अक्रूर होकर के इतना कठिन कर्म कर रहा है, तो क्रूर हो जाएगा तो क्या करेगा, इस तरह की बात। अक्रूर आगत क्यों वह यह कंसस्य अर्थ साधक तदाहु, क्या येन अक्रूरेण कंसार्थ साधकेन कमल लोचन कृष्ण मधुपुरी नीत। जिस अक्रूर के द्वारा कमल लोचन जो दृष्टि मात्र से हम सबका सर्व संताप दूर कर देते थे, वो आंखों की दृष्टि याद आ रही हो, रहते केवल देखते तो हम लोगों का विरह दवानल समाप्त हो जाता, हम सुखी हो जाती, तो ऐसे कमल लोचन श्री कृष्ण को परमानंद घन मूर्ति अस्मत प्राणेश्वर अत एवादृशस्य ब्रजातत्र नयनम अयुक्तम एवेति भाव। कृष्ण को ले गया जो परमानंद घन मूर्ति हमारे प्राणेश्वर, जिनको ब्रज से बाहर नहीं जाना चाहिए और नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वही दुष्ट आया तो लेकर के चला गया। कहाँ ले गया, वो भी मधुपुरी में ले गया, मधु दैत्य जहाँ रहता है, मधु दैत्य का बसाया हुआ नगर, मधु नामा महादैत्य तस्य पुरीम इति श्लेषेण तस्यां तन्नयन अयोग्यता उक्त। यद्यपि स्वभर्तु कंसस्य एव अर्थ साधनाय श्री कृष्ण नीतवान, में संवाद फैल चुका था कि कंस अक्रूर को भेजा था कृष्ण बलराम को ला करके उनकी जान मारने के लिए, और यह दुष्ट जानता था और बैठा करके ले गया, इतना यह क्रूर है, इसके समान तीनों लोक में क्रूर कोई व्यक्ति नहीं। ले गया कंस का अर्थ साधने के लिए, लेकिन तथापि दैवात पर दैव का ऐसा विधान, ईश्वर की ऐसी कृपा की हमारे प्रियतम के हाथों से वो मारा गया। तो तस्मिन घाती ते स्वार्थ साधना तत्र श्री कृष्णम रक्षित्वा जत पुनरागत। तो इस तरह से इसके द्वारा तो कंस का अर्थ तो साधन है, कंस को मरवा दिया, ले गया ये कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कंस को मरवा दिया। जो कंस को मरवा दिया तो रथ पर श्री कृष्ण को बैठा कर उसे लाना चाहिए था, तो वहीं पर श्री कृष्ण को छिपा दिया, और अब पता नहीं किस अभिप्राय से आया है। यदि कोई यह पूछे कि हो सकता है कृष्ण को लेकर के आया हो, वो लोग भीतर घर में अभी सोए होंगे, रात को पहुंचे होंगे, ऐसे क्यों कह रहे हो कि कृष्ण को नहीं लाया, कि न इनको विश्वास है कृष्ण आए होते तो सबसे पहले हमारे पास आए होते, इस स्वभाव को मिला करके कह रही हैं वो, और वो नहीं आए। श्री कृष्णम रक्षित्वा जत पुनरागत तत् नूनमम अभिप्रायण, उसका अभिप्राय क्या है आने का। कंसम घातयित्वा पुनः किमर्थम आगत इति आशंक्य कार्यम संभावयन्ति, आशंका करके स्वयं ही अनुमान कर रही। प्रेतस्य भर्तु निष्कृति, अपने मरे हुए स्वामी के कंस के निष्कृति के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए, या अर्ध दैहिकम उसकी ऊर्ध गति करने के लिए, अस्माभि साधयिष्यति, क्या हम लोगों से अब साधित करेगा कंस का अर्थ, अर्थात अस्मन मांसः पिंडान कृत्वा दास्यति किम इत्यर्थ। क्यों आया है, क्या उद्देश्य है। इति बदंती नाम, इस प्रकार से वे आपस में बात कर रही थी उद्धव क्यारी में बैठ करके। वन था छोटा सा, बड़ा सुंदर, सब जो ब्रज में जाते हैं नंदगांव देखे होंगे, वहीं पर गोपियां सवेरे जुटती थी दही मथने के बाद जगह जगह से, कई गांवों से, और श्री राधा रानी भी वहीं आती थी, तो वे आपस में कृष्ण की वार्ता करके किसी तरह से विरह के दिन पूरा कर रहे थे, बड़े मुश्किल से, क्योंकि उसी पथ से श्री कृष्ण गए थे मथुरा, तो उसी पथ पर देखती रहती थी कि वे अब लौटेंगे अब लौटेंगे। और उद्धव जी को भगवान ने बताया था सब स्थान। तो इस तरह बदंती नाम स्त्री नाम वे परस्पर में बातचीत कर रही थी। तत्त गृहवर्ती नाम सर्वासम गोपी नाम तथा तस्मिन व समय, उसी समय जब उनकी बातें हो रही थी और बातों का विषय रथ का आगमन था तत्काल में। वैसे तो श्री कृष्ण चर्चा वो निरंतर करती रहती थी, लेकिन अब तत्कालिक प्रसंग था नंद द्वार पर रथ का दर्शन। तो उसी समय कृताहनिकः कृत स्नान आदि नियम, स्नान जप और तिलक वगैरह करके उद्धव जी आगात श्री कृष्ण प्रेयसियों की सभा में पहुंचे, और पूरा वस्त्र पहने हैं श्री कृष्ण जैसा है, दूसरे अध्याय में वर्णन। जत्र श्री कृष्ण प्रेयस्यः ताह नित्यं मिथः सम दुखतया मिलित्वा वसन्ति तमेव स्थान विशेषम एकांतम अनिविश्चित इत्यर्थ। वे किसी से पूछे नहीं कि मैं गोपियों से कहाँ मिलूंगा, श्री राधिका कहाँ मिलेंगी या और सखी कहाँ मिलेंगी, भगवान ने स्वयं ही सब कुछ बताया था कि इस समय वे वहाँ रहती हैं, यहाँ होंगी यहाँ होंगी, तुम ऐसे पहुँचना जाना, ये करना ऐसे करना। तो वहीं पर वे पहुँचे। कृताहनिकः जो दैनिक नियम है, स्नान करना, जप करना, शास्त्र पढ़ना, जो भी है उसको उद्धव जी ने पूरा किया। इस उक्ति पर हरिश्वर जी लिखते हैं, नित्य कृत्यम तु कर्तव्यम एवेति विधि शासनम युक्तमेव उद्धवो सिद्धो विधि युक्त विहितानिकः। चाहे कोई सिद्ध हो या कुछ भी हो, जो शास्त्र के नियम है उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और उद्धव से बड़ा सिद्ध कौन होगा जो भगवान के सखा हैं, लेकिन सवेरे स्नान आदि का जो नियम है उसको पूरा कर रहे हैं। बोले जमुना में स्नान करके गए। जी को जब वो देखती हैं तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं। श्री सुता उवाच,
तं वीक्ष कृष्णानुचरं व्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्।
दो श्लोक का अन्वय एक में है।
कृष्णानुचरम, कृष्णस्य अनुचरम भृत्य, कृष्णम अनुचरति भक्ति विशेषेण स कृष्णानुचर, अथवा कृष्णानुचरण, कृष्ण जैसा जो लगे, कृष्ण की वेशभूषा पहन करके जो कृष्ण जैसा लग रहे हैं और कृष्ण जैसा जैसी जिनकी चाल है उनको कृष्णानुचर कहते हैं, कृष्ण का अनुचर। तम वीक्ष्य इच्छा साक्षात दृष्ट्वा इत्यर्थ, कथम भूतम कृष्णानुचरण प्रलंब बाहु प्रकर्षेण लंब बाहु बाहु जस्य तम जानुलंबित भुजा थे। भगवान श्री कृष्ण जैसा ही इनका शरीर, प्रलंब बाहु प्रकृष्ट लंब घुटने तक जिनकी भुजा है उनको अजानुलंबित भुजा थे, प्रलंब बाहु और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भुजाएं, नवकंज लोचनम नबीन कंजवत लोचने जस्यतम, नबीन कमल के समान सुंदर जिनकी आंखें थी, पीतांबरम और पीला वस्त्र पहने हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण पहनते हैं, श्री कृष्ण का ही ये वस्त्र पहने हैं, पीतांबरम पुष्कर मालिनम और कमल ग्रथिता माला विद्यते जस्यतम, जो कमल की माला पहने हैं। जैसे जैसे गोपियां देख रही हैं उद्धव जी को वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, पुष्कर मालिनम लसन मुखार बिंदम, और मुखार बिंद बहुत सुंदर लग रहा है, लसत चमक रहा है, बहुत सुंदर है, मणि मृष्ट कुंडलम जो मणियों के उज्ज्वल कृत कुंडल को धारण किए हैं, उज्ज्वलीकृत कुंडल पहने हैं, कानों में बड़े उज्ज्वल है, झलमल झलमल कर रहे हैं और मणि के कुंडल, तो ऐसे कृष्णानुचरम तम वीक्ष ब्रजस्त्रिय, सदा श्री कृष्ण के रूप वेश आदि का ध्यान करने वाली या गान करने वाली ब्रज की नारियां ब्रजस्त्रिय सुविस्मिता बहुत विस्मित हुई, आनंद के कारण विस्मित हुई, सुचिस्मिता प्रियतम के दूत का साथ प्राप्त होगा और उनका संवाद मिलेगा, इसलिए सुचिस्मिता मुख पर सुख की मुस्कान आ गई। सुचिस्मिता अच्युत वेशभूषण अपिच दर्शन अयम कह, तबे आपस में कहने लगी अच्युतस्य वेशभूषणे इव वेशभूषणे जस्य सह, श्री कृष्ण जैसा अच्युत जैसा इसकी वेशभूषा है, वेश का अर्थ है वस्त्र और भूषा का अर्थ अलंकार वेशभूषा, यह कृष्ण जैसा वेश पहना है और अलंकार भी धारण किया है, केवल मोर पंख धारण नहीं किए थे और सब अच्युत जैसी वेशभूषा थी, अपिच्य दर्शन अपिच्यम सुंदरम दर्शनम जस्य दृश्यते इति दर्शनम, इसका दर्शन इसका रूप बहुत सुंदर है, अनेन अनुक्तम अपि श्री कृष्ण सदृशम आकार वर्णादिकम आकार वयो वर्णादिकम संग्रहित, अपिच्य दर्शन से यह ध्वनित हो रहा है सुंदर दर्शन, अपिच्य का अर्थ सुंदर दर्शन, श्री कृष्ण के समान ही आकार है उम्र है और वर्ण है शरीर का रंग धो रहा है, तो अयम कह यह कौन है व्यक्ति,
कुछ स्त्रियों को मालूम नहीं था, वे आपस में बात कर रही, कौन है, किस जाति का है, इसका क्या नाम है, इसके माता पिता कौन है, कहाँ से आया, ब्रज में तो नया व्यक्ति है और ये पता लग गया कि यही रथ पर चढ़कर आया है, तो कोई विशिष्ट व्यक्ति आया है ऐसा अनुभव हुआ। जो नई गोपियां थी, मतलब जिनको पता नहीं था कि ये कौन व्यक्ति है, वे बात कर रही कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसका उद्देश्य है आने का। अयं कह, किसका आदमी, कस्य, हम एक यह प्रश्न मुख्य उठ रहा है कि कहां से आया, किसका व्यक्ति है यह, किसका आदमी है अथवा किसका पुत्र है। कस्य का अर्थ कुतः वा, कस्मात् देशादयम् आगतः, यह किस देश से आया है। इति उक्त्वा, यह कह करके सर्वः समुत्सुका, सभी कई स्थानों से मिलित हो करके, और समुत्सुक थी ही, आकर के उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया। बब्रु परितः बब्रु, बब्रु का अर्थ है आवृतवत्य, घेर लिया, उनके पास सब चली आई, हो गया कि यह श्री कृष्ण का व्यक्ति है। समुत्सुका, संभ्रांता, समुत्कंठिता इत्यर्थ, बहुत उत्कंठित थी कृष्ण का संवाद पाने के लिए। कृष्ण वृतांत प्राप्ति संभावना उत्सुका, संशय व्याकुल मनस, तम निरसनार्थम उत्सुका, अथवा मन में एक संदेह था कि कौन व्यक्ति है, क्या है, तो उसका समाधान करने के लिए, अथवा श्री कृष्ण वार्ता की प्राप्ति की संभावना से परम उत्कंठिता होकर गई। और उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय हैं, जिनके गोद में, जिनके बाहों में अपना चरण रख कर श्री कृष्ण सोते हैं, तो ऐसे उद्धव जी को आवेष्टितवत्य। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण तत्पदाम्बुजम एव आश्रय जस्य तम जद्वा, उत्तम श्लोक पदाम्बुजयो संवाहनाद्यर्थम उपधावन वद आश्रयम आश्रय यह स। तो उत्तम श्लोक पदाम्बुज आश्रयम का दो अर्थ है, उत्तम श्लोक के चरण कमल जिनके आश्रय है उद्धव जी के, अथवा उत्तम श्लोक के चरण कमलों के जो आश्रय निपात संवाहन करते हैं, तकिया के बदले अपना देह रख देते हैं उद्धव जी, तो भगवान के चरण कमल उन पर विश्राम करते हैं, तो उद्धव जी उन चरण कमलों के आश्रय है। कि ये प्रीतम के दूत हैं, कृष्ण के दूत हैं, तो इसलिए हास आ रहा है, खुशी आ रही है, लेकिन उसको लज्जा के द्वारा वे नियंत्रित कर रही है। इच्छा सुनृता भी, और प्रेम से उद्धव जी के प्रति देख करके और सुंदर वाणी से उनका स्वागत करके, सुसत्कृतम, स्वागत किए, कैसे स्वागत, किन किन बातों से की, सब्रीड़ हास से, सब्रीड़ इक्षण से, और सुनृत से, नृत कहते हैं सुंदर वाणी, बहुत सुंदर वाणी बोलकर, आप कैसे हैं, आपका स्वागत है, ऐसे ऐसे कुछ कहकर, रहसी एकांत में अपृच्छन, उनको रमापति का संदेश हरम विज्ञाय, श्री कृष्ण का संदेश वाहक जान करके, तब इस प्रकार पूछने लगी। यह रहसी का अर्थ है कि नंद महाराज आदि न जाने, मतलब लोक से अलग, रहसी का अर्थ है। तो गोपियां बैठी हुई थी और कुछ आ रही थी, और कुछ को अब संवाद मिला कि उद्धव आए हैं, कृष्ण के सखा आए हैं हम लोगों को सांत्वना देने के लिए, सुखी करने के लिए, समझाने के लिए आए हैं, गांव गांव में यह खबर फैल गई तुरंत, और झुंड की झुंड गोपियां आने लगी उद्धव जी से मिलने के लिए। रत्नाकर जी यहाँ कुछ लिखते हैं, जब ही उद्धव के आगमन का समाचार गोपियों के कानों में पड़ता है, तभी वे अपना स्थान या कोई काम धाम छोड़ करके और दौड़ती हैं उद्धव से मिलने के लिए। बहुत बड़ा उल्लास छा गया, हर्ष छा गया, यह सोच करके कि प्रियतम ने हमें याद किया है, कृष्ण ने याद किया और अपने सखा को भेजे, बहुत भारी आशा उत्पन्न हो गई। तो धाई धाम धाम ते अवाई सुनी उद्धवा के, धाई धाम धाम ते, धाई मतलब दौड़ी, धाम धाम ते अपने अपने घर से, अवाई सुनी उद्धवा की, उद्धव की अवाई सुन करके, उद्धव आए हैं, श्री कृष्ण के सखा आए हैं, और सुन करके अपने अपने घर से दौड़ी, और लाख प्रकार की अभिलाषाओं से सनी हुई है, पगी हुई है कि मैं उद्धव से यह कहूंगी, मैं उद्धव से यह कहूंगी, यह पूछूंगी। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं, पै विकल बिलोक तीन है, सकल करे जो थामी आपन पोष खोए रही। लेकिन उद्धव जी को विकल देखकर, उद्धव जी का जब चेहरा उन लोगों ने देखा तो उद्धव जी विकल थे। रात में नंद बाबा की दशा देखकर उद्धव का मुखमंडल मुरझाया था कि वो जिस काम के लिए आए वो कर नहीं सके, तो नंद बाबा को सुखी नहीं कर पाए तो हम गोपी जनों से क्या बात करेंगे, कैसे कहेंगे, यह संभावना करके वे विकल थे। तो उद्धव जी को विकल देखा, विकल बिलोकी तीन है, सकल करेजो थामी आपन को खोए रही। जब उद्धव को विकल देखा तो वो भी करेजा को थाम करके हाथ से आह करने लगे कि अब हम क्या इनसे पूछे, मतलब ये आशा हो गई कि कोई अनुकूल समाचार नहीं है, कृष्ण के आने का समाचार नहीं है। लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनन की, उद्धव के मस्तिष्क पर बदन पर देखने लगी और उनके बदन को मुख को देख करके अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही, जो उल्टा है, अपने मुंह में अपने भाग्य की रेखा होती है ललाट में, लेकिन उद्धव के मुख में अपने भाग्य की रेखा पढ़ रही है, मतलब ये देख रही है कि हाय हाय हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारे प्रियतम के मित्र भी आए हैं तो बहुत खिन्न है, क्या हो गया, कोई बहुत दुषित घटना हो गई मथुरा में, क्या हो गया। लेखी निज भाग लेख रेख तीन आनंद की, उनके आनंद में अपने भाग की रेखा देखते हैं। जानो न किता ही आतुरिशो मन भय रही, इसको जानने के लिए कि हाय विधाता हमारे भाग्य में क्या लिखा है, इसमें भय रहे मतलब सन गई, अभी जानना चाहती थी, उद्धव के मुख से सुनना चाहती थी कि क्या समाचार है, तो सांस रोकी, आंस का अर्थ है आंसू, रोक लिया, पूछ लिया, पूछने के लिए उमड़ रहा था आंसू, लेकिन आंस रोकी, सांस रोकी और सांस को भी रोका कि सुने क्या बोलते हैं, आंस रोकी सांस रोकी, पूछना हुलास रोकी, मूर्ति निराश किसी आस भरी ज्वाय रही। ऐसा लगता था गोपियों का शरीर ऐसा था जैसे मूर्तिमान निराशा आशा से भरा हो। धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की, धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की, बाम बाम लाख अभी लाखनी शोभ रही, कह रत न कर विकल बिलोकी तीन, सकल करे जो थानी आपन पै खोए रही। लेखी लेख भाग लेख रेख तीन आनन की, जानन की तैयत सुमन में रही,
सासरों की सासरों की पूछना हुला सरों की मूर्ति निराश की सी आस भरी जय रही आसरों की सासरों की पूछना हुला सरों की मूर्ति निराश की सी आस भरी जय रही।
ब्रज के गांवों में जब गोपियां यह सुधि पाने लगी कि मनभावन मनमोहन श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव जी आए हैं, इस सुधि को जब ब्रज गांव में पाने लगी तो रत्नाकर कभी कहते हैं कि ग्वालिन की झौर झौर झुंड झुंड समूह समूह ग्वालिनों का दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबाय लगी। दौड़ दौड़ करके नंद पौरी में नंद महाराज के भवन के तरफ आने लगी और वहाँ जा करके उद्धव का पता पा करके उद्धव जी के पास आ करके देखने लगी। वैसे वो पत्र को लिए थे हाथ, तो गोपियां चारों तरफ से उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर। उद्धव जी पत्र लेकर के खड़े हैं तो कोई पीछे से कोई कहीं से अपने पंजे पर उचक उचक कर पत्र देख रही है कि हमारे विषय में क्या लिखे हैं। वो पढ़ना चाहती क्या लिखे हैं क्या लिखे। उझकी उझकी उझकना समझते हैं, जब आधे पैर पर अगले पैर पर खड़े होते हैं देखते हैं तो उसको उझकी कहते। देखना उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर, पद कमल के पंजे पर उझक उझक कर पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छोए लगी। पत्र को देख देख करके और केवल बिना पढ़े ही पत्र को लेकर के छाती से छुआने लगी। पत्र श्री कृष्ण जैसे प्रिय है तो उसको छाती से छोहनी माने छोह से प्रेम से छुए लगी छुआने लगी और कहने लगी हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहन सबय लगी। सभी यही कहने लगे हमको क्या लिखे हैं हमको क्या लिखे हैं हमको क्या लिखे हैं पढ़िए बताइए बताइए।
भेजे मन भावना के उद्धव के आवाना की सुधि ब्रज गावन में पावना जब लगी। कह रत न कर गुवालिन की झर झर दौड़ दौड़ी नंद पौरी आवना तब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पर पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छोहनी। हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहना सब लगी।
फिर से गई इसको
भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गवनी में पावन लगी। कह रत न कर रुवलिन की झर झरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझकी उझकी पद पंजनी के पंजनी पेखी पेखी पाती छाती सोहनी छाए लगी। हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहना सब लगी।
कहती है
जानी मस्तम जदुपते है पार्षदम समुपागतम भर्तृह प्रेषितः पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया
तथा निश्चय अपि दुखेन स्वसंबंधम अपलंत्य आहु। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी से बातचीत करते समय गोपियां सबसे पहले यह कह रही हैं कि हमारा श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध कहाँ है, क्यों हमें याद करेंगे। कोई संबंध रहता तब याद कर सकते थे, कोई संबंध ही नहीं है। जो उनके संबंधी हैं उनके लिए आपको दूत बना करके भेजे। हम जान गए, जानीम, सबसे पहले यही शब्द निकल रहा है, जानीम, हम जानती हैं। क्या क्या जानती हैं? हम जानती हैं कि आप जदुपति के पार्षद, गोपीपति के पार्षद नहीं हैं। जानती हैं आप किसके पार्षद हैं। अच्छा, और क्या जानती हैं? यह भी जानती हैं कि आप आए हैं यहाँ, और यह भी मालूम है कि उनके भेजने से आए हैं। किसके पास आए हैं यह भी हम जानती हैं। अपने माता पिता के पास आपको भेजे हैं, और ब्रज में उनके लिए स्मरणीय कुछ है ऐसा तो हम देखती नहीं। प्रगाढ़ प्रेम में अभी भी उलाहना चालू। पहले आया था एक बार कविता में, कृष्ण से जब भेंट होगी तो पहले उलाहना देंगे, पूछेगी क्यों ऐसे किए, क्यों नहीं आए। तम प्रिय संदेश हरम विज्ञाय स्वस्य उपेक्षणीयत्वम अनुमाय प्रणय कोपा क्रांत स्वांतः तदा गमन गमन अन्यथा वर्यंती। इतने दुख भोग चुकी हैं विरह में कि अभी प्रणय कोप से आक्रांत हृदय है इनका, और उद्धव के आगमन का अन्यथा वर्णन करती हैं कि हमारा स्मरण तो कभी कृष्ण करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ क्या नाता है उनका, कोई संबंध नहीं। बाद में कहते हैं अरे भैया कोई कितना भी महात्मा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने परिवार के लोगों का इतना बंधन होता है कि वो खींच करके चला ही आता है, और दूसरे के साथ संबंध को कौन देखता है। समुपागतम त्वम जदुपते है पार्षदम जानीम राजरथारोहणादिना। राजरथ पर चढ़ कर क्या है, हम समझ गए वो रथ जो खड़ा है राजा जी के द्वार पर, वो उसी पर आप चढ़ करके आए। पार्षदम, हम लोग आपको जदुपति का पार्षद जानती हैं। जदुपते न तु गोपीपते, जदुपति कह करके भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा था कि गोपाल थे, गोपीपति थे, अब तो भाई जदुपति हो गए, अब काहे को आएंगे इधर। अब इधर आने का प्रश्न ही नहीं है, इतना राज्य मिल गया, वैभव मिल गया, सफलता मिल गई, तो अब गोचारण करने आएंगे। जन्म हुआ गोपों में और हो गए अब जादव। पित्रोह प्रिय चिकित्सया, अपने माता पिता के पास तुमको भेजे हैं उनका प्रिय करने के लिए, और वो अभी उनको सुख देने के लिए नहीं, केवल उनका प्रिय करने के लिए भेजे हैं। उनको बहुत संशय है कि कहीं वे मर गए तो कृष्ण पर लांछन लगेगा कि अपने माता पिता को मार दिया अपने विजोग में, इसीलिए उनका थोड़ा प्रिय करके और जीवित रहे इसके लिए भेजे हैं। नंद महाराज से भी उसका कोई प्रेम नहीं है, केवल प्रिय करने के लिए। प्रिय मतलब झूठा समाचार दे करके कि आ रहा हूं, ये कर रहा हूं, जिसे जीवित रहे, सुख देने के लिए नहीं भेजे। पित्रो प्रिय चिकित्सा, पित्रो नंद जसोदय प्रिय चिकित्सा, न तु अस्माकम प्रिय चिकित्सा। स्नेह से नहीं भेजा है, अपजस के डर से भेजा है ना। अब उधर लड़का गया मथुरा में, इधर उसके विरह में माता पिता मर जाए तो जिंदगी भर कृष्ण को कलंक लगेगा कि नहीं, अरे ऐसा नालायक है, माता पिता को छोड़ दिया और तड़प करके मर गए। तो अपना कलंक, अपना अपजस मिटाने के लिए वो भेजा है। जसोदे रुदित्वा म्रियते, नंद जसोदा रो करके मर जाएंगे, कृष्ण मथुरायाम राज्यम करोति इति लोक निंदा भये न त्वां सीता।
भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती। आए धरते नंद की सोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती, गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती, गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती, गिरवर चढ़ कर तेरे सुनाती। आ सुनते मम चित चोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती, मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती। आ मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती, मैया यशोदा मोहे चुगा चुगाती। आ घर भर कनक कटोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु प्रभु गिरधर नागर, आए पाटी दरस नित भोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी।